حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحم اللہ تعالی کہ دنیا کا مزہ بھی جب آتا ہے جب دل پر کوئی مصیبت ہو، اسباب کے پردے جل چکے ہوں اور تدبیر کے ناخن گھس چکے ہوں۔ اس پر مثنوی کے حضرت والا کے اشعار ہیں، فرماتے ہیں ناخن تدبیر گھس جانے کے بعد، پردے اسباب جل جانے کے بعد، بس تیری جانب ہے اب میری نگاہ، ناؤ میری پار ہو میرے الہ، بس تیری جانب ہے جب، اور سب ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، دھتکار دیتے ہیں، پھر آدمی اللہ تعالیٰ سے صحیح سے لو لگاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ بھلا ان کا منہ تھا میرے منہ کو آتے، یہ دشمن انہی کے ابھارے ہوئے۔ یعنی ایسے حالات پیدا کیے جاتے ہیں تاکہ بندہ مومن اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جائے۔ تو فرمایا بس تیری جانب ہے اب میری نگاہ، ناؤ میری پار ہو، ناؤ کہتے ہیں کشتی کو، ناؤ میری پار ہو میرے الہ، اگر تو چاہے پاک ہو مجھ سا پلید، فضل سے تیرے نہیں کچھ بھی بعید، فضل سے تیرے نہیں کچھ بھی بعید، جس کو تیری راہ سے جو بھی ملا وہ تیرے دستے کرم ہی سے، وہ تیرے دستے کرم سے ہی ملا۔ صرف آپ ہی کا فضل ہو جائے اور آپ جذب فرما لیں تو پھر آدمی کہاں سے کہاں پہنچتا ہے۔ اس لیے آدمی بعض دفعہ اپنی تدبیر کو دیکھتا ہے، تدبیر ٹوٹ جاتی ہے، حالات بگڑ جاتے ہیں، پھر بھی بندہ اللہ تعالیٰ کا دربار نہ چھوڑے۔ بچے کو اماں مارتی ہے، بچہ پھر بھی اماں سے لپٹتا ہے، مار کھا رہا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، پھر بھی اماں سے لپٹتا ہے۔ تو یہ حوادث آتے رہتے ہیں اور یہ اس سے اور اللہ تعالیٰ کے قرب ملتا ہے اگر صحیح طریقے سے، اگر صحیح طریقے سے بندہ اللہ تعالیٰ سے آہ و فغاں کرے تو اس سے اللہ تعالیٰ کا اور قرب ملتا ہے۔ حضرت والا فرماتے ہیں رحم اللہ تعالیٰ 1000 تہجد روزانہ کوئی پڑھے عادی ہے خوب تہجد پڑھنے کا، لیکن بعض غم ایسا آتا ہے اس پر صبر کرنے سے 1000 تہجد سے زیادہ مقام بلند ہو جاتا ہے۔ جیسا ابھی پڑھا گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم تمہارا امتحان لیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے، لیکن گھبراؤ مت، جیسے طالب علم ہوگے ویسا ہی امتحان لیا جائے گا۔ یہاں ہمارے دوست پڑھتے تھے تو ہم پرچہ بناتے تھے تو اس میں جی یہ چاہتا تھا کہ ایسا پرچہ بنائیں پتہ چلے کہ ان لوگوں کو کچھ اور بھی نکات آتی ہے یا نہیں آتی، کچھ مشکل مقامات بھی حل کر سکتے یا نہیں۔ پھر یہ خیال آتا کہ بہت سے کمزور ہیں، اگر ہم اگر قابل کو آزمائیں گے تو کمزور رہ جائیں گے۔ پھر پرچہ ایسا بنایا جاتا تھا جس میں سب جو ہیں کچھ نہ کچھ نمبر حاصل کر سکے۔ تو جب ایک عام استاد اتنا شفیق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں کہ میرے بندے جو ہیں ان پر کوئی ایسی، صحابہ کا امتحان تو ایسا تھا کہ آج سوچنا بھی دشوار ہے، ہمارا امتحان بس یہی ہے، تھوڑا سا رزق کے پریشانی، اکثر کا یہی پریشانی، کوئی اس وجہ سے پریشان نہیں ہے کہ مجھے ابھی تک تعلق مع اللہ نہیں ملا، نسبت کا موتی نہیں ملا، کوئی اس وجہ سے پریشان نہیں، پریشان اس وجہ سے مجھے صحیح رزق نہیں ملا ابھی تک، حالانکہ رزاق نہیں ملا یہ پریشانی کی بات، رزق تو جانور کو بھی مل جاتا ہے، کافر کو بھی مل جاتا ہے، رزاق نہ ملا یہ پریشانی کی بات۔ تو بعض دفعہ آدمی آہ و فغاں کرتا ہے پھر ایسے حالات میں تو اللہ تعالیٰ کا ایسا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے شیخ مرشد رحم اللہ تعالیٰ شعر فرماتے تھے، گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے، گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے، مجھے تو یہ جہاں بے آسماں معلوم ہوتا ہے۔ یعنی آسمان والا خود نظر آتا ہے کیونکہ سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، ایسا غم گزرتا ہے بعض دفعہ دل میں، ایسا غم، ایسی تکلیف ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نظر آتے۔ بعض چیزیں مجاہدات کے بعد دی جاتی، مجاہدات سے پہلے اگر سب کو دے دی جاتی ہر آدمی دعوے دار ہوتا، ہم سب اللہ کی محبت کرتے، جب محبت کرتے ہیں تو اس کے لیے قربانی دو، سب سے بڑی قربانی فجر میں اٹھو، اس کے بعد نظر کی حفاظت کرو، یہ سب قربانی دو، اپنے معاملات درست کرو، جھوٹ نہ بولو۔ آج ہر آدمی کہتا ہاں بھائی میں بہت اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن مجبوری کے طور پہ یہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے، अब काम यहाँ कर रहे हैं, वादा वहां से कर रहे हैं कि हाँ हम कल आके कर देंगे, आएंगे नहीं, तीन दिन बाद करेंगे, लेकिन झूठ बोल के रिस्क हासिल करना चाह रहा है, रज़ाक को नाराज कर रहा है, ये नहीं देख रहा है। तो मुजाहदे के बाद बाद दफा मुशाहदा होता है, लेख शीनी और लज्जाते मकर हस्त बर अंदाज आए रंजे सफर, हस्त बर अंदाज आए रंजे सफर। एक बुजुर्ग थे और वो हकीम उलम्मत रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, और हकीम उलम्मत के मलफूजात ऐसे ही नहीं होते, बल्कि अगर कोई हिकायत भी होती है तो उसमें भी बहुत से बहुत सारी उसके अंदर हमारे लिए मिसालें पोशीदा होती हैं, और बहुत से उसके अंदर ऐसी चीज होती है हमारे लिए मशाले राह होती। वादवा हिकायत भी शेख सादी वादवा हिकायत लिखते हैं, खुद लिखते हैं कि मैं जब बच्चा था तो मेरे अब्बा ने, अब ये सही है या जो हिकायत है, मकसद समझाना है तो हिकायत लिखना ये जायज है, अहले इल्म ने इसको जायज करार दिया कि अगरचे कोई फर्जी हिकायत भी लिखे। तो फरमाया कि मेरी उंगली अब्बा पकड़ के लेके जा रहे थे और रास्ते में समझाते जा रहे थे, देखो बेटा बड़ों की उंगली थाम के चलना वरना बहुत परेशानी होती है, लिहाजा जब मेले में गए तो जल्दी में बच्चों का ध्यान तो उधर होता, उंगली छूट गई और मेला देखने लगे, इतना इन्हेमाक था कि अब्बा याद ही नहीं रहे, जब देर हो गई तो याद आया अब्बा कहाँ है, अब अब्बा को ढूंढ रहे हैं मेले में, इतना मजमा जैसे इज्तिमा में होता है, अब कहाँ ढूंढ रहे हैं, कहाँ ढूंढे, शाम तक परेशान फिरते रहे। फिर जब अब्बा मिले तो अब्बा ने फरमाया, मैंने कहा था कि अगर बड़ों की उंगली नहीं थामोगे तो परेशान रहोगे, मकसद ये है कि बड़ों का दामन थाम लो तो रास्ता आसान हो जाएगा, वरना जैसे बच्चा बड़ों की उंगली छोड़ के परेशान होता है, इसी तरह हम भी अल्लाह के रास्ते के बच्चे हैं, अगर बड़ों का हाथ और दामन नहीं थामेंगे तो काम ज्यादा, मेहनत ज्यादा, और उसका अजर और उसका बदला हमें कम नजर आएगा, और जब आदमी किसी बड़े का दामन थाम लेता है तो काम कम करना पड़ता है और मंजिल आसान हो जाती है। अब इतनी बड़ी गाड़ी, हजरत हरदोई फरमाते थे उस जमाने में 10 लाख फरमाते, 10 लाख की गाड़ी में कोई जा रहा है, उस जमाने ये 1985-90 की बात है, अब 10 लाख की गाड़ी की क्या हैसियत, अब तो 10 लाख की पुरानी गाड़ी मुश्किल से मिलती, लिहाजा 1-2 करोड़ की गाड़ियां आ रही हैं, लेकिन इतनी महंगी गाड़ी पे कोई जा रहा है, और हमारी दोस्ती की वजह से उसने खुद रोक लिया, आओ भाई कहाँ जा रहे हो, मैं तो जा रहा हूँ ऑफिस जा रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। अब वो पैसे मांगे, कितने पैसे दोगे, को बार्गेनिंग करे, कुछ भी नहीं मांगे, दोस्ती है ना, वो अपनी बेहतरीन गाड़ी में, मेहनत उसकी है, तो गाड़ी उसने खरीदी, अपने नाम कराए, कितने इसके लिए मसाइल होते हैं, लेकिन हमें मुफ्त में उसने मंजिल पे पहुंचा दी, वजह क्या है, हमने वो हम उसकी दोस्ती काम आ गई। इसी तरह मुजाहदा और मेहनत अल्लाह वाले करते हैं, और जो उनकी सोहबत में बैठता है उनका ताल्लुक और उनकी दोस्ती काम आ जाती है, और वो फिर आसानी के साथ मंजिल पे पहुंच जाता है। आप देखें बाज़े लोग कितनी मेहनत करते हैं, अपने गांव से दुकान, परचून की दुकान, ठेले से बढ़ बढ़ के जाके कुछ कारखाना लगाते हैं, फिर मिल फैक्ट्री के मालिक बन जाते हैं। अब जब साहबजादे पैदा होते हैं बेटे साहब, तो वो सोने का चमचा लेके पैदा होते, इनका क्या कमाल है, ये तो फजल हो गया कि तुम ऐसी जगह पैदा हो गए, लिहाजा ये फजल होता है कि जो इसको ऐसा कोई बाकमाल अल्लाह वाला मिल जाए, वो थोड़ी सी चंद बातों में उसको कहां से कहां पहुंचा देता है, और जो खुद चाहता है फिर वो शुरू से मेहनत करे, और फिर ये यकीन भी नहीं कि वो कामयाब हो, क्योंकि बहुत से गुर नहीं आते, बहुत से पहलवानों को जो गुर आते हैं सिर्फ मन से नहीं होता, ये 3 मन का पहलवान है तो 1.5 मन वाले को गिरा ही देगा, कई दफा ऐसा होता है कि 1.5 मन वाला 3 मन पे गालिब आ जाता है, ये क्या होता है गुर और ट्रिक्स इसको कहते हैं, गुर सिखाते हैं अल्लाह वाले, नफ्स और शैतान को काबू करने का गुर सिखाते हैं। डॉक्टर साहब फरमाते थे एक लम्हे के लिए ठहर जाओ, एक घर आए ना, एक लम्हे के लिए ठहर जाओ, सलाम किया, बिस्मिल्लाह पढ़ के घर में दाखिल हुए, सलाम किया, अब बच्चे आ गए, बाबा बाबा बाबा, अब एक लम्हे के लिए ठहरो, 1 घंटे का मुराकबा नहीं, ये बच्चे मेरे अल्लाह ने मुझे दिए और इससे मोहब्बत करने का हमें हुक्म दिया है, ये बीवी मोहब्बत करने वाली, ये अल्लाह ताला की नेमत है, वरना कैसे 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 घरों के हालात हैं, थोड़ा सा शुक्र अदा करो, मारफत इलाहिया पैदा हो जाएगी। मारफत इलाही, रोजाना का ये काम है, इसी काम को मारफत का जरिया बना लो। कमाने के लिए जा रहे हो, अल्लाह आपका हुक्म है कि आपका हुक्म है कि कमाना जो है ये रिस्क हलाल इबादत है, कस्बुल हलाल फरीदा तुम बादल फरीदा, मैं उस फरीदे की अदायगी के लिए जा रहा हूँ, हक और हलाल के कमाने के लिए जा रहा हूँ। अब इसको सही आदमी अंदाज में और काम भी इसी अंदाज से करे कि वक्त पूरा दे, काम पूरा करे। अब ये कमाना जो इसकी 8-10 घंटे की नौकरी है, ये इसके लिए सवाब बन गई, वल्लाह इसके लिए सवाब बन गई। मेरे दो दोस्त थे, जहां मैं ऑफिस में था वहां सामने की फैक्ट्री से आते थे, वो आते आते वो मुतालिक भी हो गए थे, बाकायदा मशवरा करते थे, कहने हमारी फैक्ट्री के सेठ जो है बहुत देर से आते हैं और 9-10 बजे आते हैं, हमें तो 7:30 बजे आने का ऑर्डर है, तो हम 7:30 बजे आके इशराक वगैरह पढ़ सकते हैं। मैंने कहा मैं नहीं बता सकता, मैंने मुफ्ती अब्दुल रऊफ सखरवी साहब तामजरकातुम को फोन किया, फिर उनसे पूछा ऐसा ऐसा है मसला, फरमाया उनसे कहें कि जब आप रिस्क हलाल में पहुंच गए हैं, अब आप ठीक है तीसरा कलमा दुरूद शरीफ अपनी जगह बैठे बैठे जो कुछ पढ़ें, नमाज ना पढ़ें, लेकिन क्योंकि अब आप रिस्क हलाल कमाने की इबादत में है, एक इबादत में दूसरी इबादत दाखिल ना करें। दूसरे ये कि हो सकता है कि उस वक्त में सेठ आ जाए, नहीं आए तो फोन आ जाए, कहाँ है भाई साहब नमाज पढ़ रहे हैं, फलाने साहब नमाज पढ़ रहे हैं, अब कहेंगे देखो यहाँ आके नमाज पढ़ते रहते हैं, या किसी तरह आदमी कंप्यूटर पे इधर उधर जाए कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन नमाज पढ़ेंगे तो हर आदमी कहे देखो ये ऑफिस में भी नमाज पढ़ने के लिए आते। तो मुफ्ती साहब ने ये बात फरमाई कि रिस्क हलाल कमाना भी इबादत है, लिहाजा वो इशराक ना पढ़े तो बेहतर है। हाँ बैठे बैठे सीट पे बैठे हैं जहां भी ड्यूटी है, तीसरा कलमा दुरूद शरीफ इस्तिग़फार इसी तरह जो कुरान याद है वो पढ़े, तो ये बता रहा हूँ कि रिस्क हलाल कमाना भी इबादत है। ये ना समझे कि हम तो दुनिया में लगे हुए हैं, दुनिया को भी दीन बना सकता है आदमी अगर अपनी नीयतों को दुरुस्त कर ले। ये बीवी बच्चों की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने डाली है और ये सुन्नत के अकरब तरीन रास्ता है। आप अलैहिस्सलाम अपनी अज़वाज मुतहरात के लिए नान और नफका 1 साल का जमा करते थे, ये तवक्कुल के खिलाफ नहीं है, 1 साल का नान और नफका देते थे। ये अलग बात कि हमारी माएं भी ऐसी थी, सब बांट देती थी, फकर फाका पे गुजारा होता था, लेकिन इसलिए घर वालों का कि निगहदाश्त करना और उन पर खर्च करना ये भी सवाब है और उसके लिए हलाल कमाना ये भी सवाब है। तो आदमी चाहे तो यही मारफत की चीजें अल्लाह वालों से पता चलती है कि नौकरी वरना आजकल इसको लोग फटीक समझते हैं, ये अच्छे 5 बच्चे हो रहे हैं और हमें तो बच्चे कहाँ किसने दिए, क्यों आपके हुए, आप ही ने पैदा किए है ना, लिहाजा अल्लाह ताला ने दिए, अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी लगाई है जो तुम उनकी परवरिश करोगे हर 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 दिरहम पर। हदीस शरीफ का मफहूम है, एक तुम बच्चों पे खर्च करते हो जायज हलाल इसराफ ना हो, और एक तुम बाहर खर्च करते हो, घर वाला सबसे ज्यादा और बेहतरीन सदका है, ये भी सदका है जो हम बच्चों पे खर्च करते हैं। सदका कह के आदमी नहीं करता, लेकिन फिर भी ये सदका इसका सवाब वहां पे मिलेगा। औरतें जो बच्चे पालती हैं उनसे बताइए ये क्या रोता रहता है बच्चा जब देखो, और ये देखो हर साल 2 साल बाद फिर हमें हमल उठाना पड़ता है, उनसे बताइए एक एक दिन जो हमल का होता है इस पर अजर मिलता है। बच्चे को जब तक माँ दूध पिलाती है, थानवी ये सारी बातें बहिश्ती ज़ेवर में लिखी है, एक एक दिन उसको अजर और सवाब मिलता रहता है। अगर हम चीजों का रुख अल्लाह ताला की तरफ कर लें तो हर काम में मजा आने लगे। बात वही है, ताल्लुक में अल्लाह हो जाए तो दुनिया का हर काम दीन का काम बन सकता है और हर काम से मारफत हासिल हो सकती है, और ताल्लुक में अल्लाह ना हो तो नमाज पढ़ने भी क्यों आए, बस इसलिए आए कि लोग क्या कहेंगे नमाज नहीं पढ़, नमाज भी पढ़ रहा है फिर भी ताल्लुक में अल्लाह नहीं मिल रहा। और ताल्लुक में अल्लाह अगर आदमी बनाना चाहे तो नौकरी के साथ बना सकता है, काम करता हुआ बना सकता है। अल्लाह ताला हमें हम सबको अपनी मारफत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।